أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد، السلام عليكم. دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کفارے کے سلسلے میں، یعنی جریمہ جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی بنا پر، یعنی شریعت کے مخالفت کرنے کی بنا پر انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اس کے چند احکام باقی ہیں جو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے چند احکام بیان کیے تھے، جس میں سب سے آخری احکام جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان کفارے کے طور پر جو ہے وہ فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں کھانا دے، اگر لباس دینا چاہتا ہے تو لباس دے، پیسہ دینا کافی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک حکم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک روزے کو توڑ دیا ماہ رمضان میں اور اس پر جو ہے کفارہ واجب ہو گیا، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یہ انسان چاہتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو جب یہ انسان چاہ رہا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 60 ہی مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایسا نہ ہو کہ 30 مسکین ہوں، آج ان کو دوپہر کا کھانا کھلا دیا، پھر شام کا کھانا کھلا دیا، یا آج کھلا دیا پھر دوبارہ کل کھلا دیا، یا اگر ان کو جو ہے وہ کھانا دینا چاہتا ہے تب بھی جو ہے 60 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 30 مسکین ہو اور ان 3 مسکین کو جو ہے وہ ایک ایک کے بجائے دو دو مدے دیا جائے، یعنی 60 مسکینوں کا کھانا 30 مسکینوں کو ڈبل ڈبل دے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر متعدد کفارے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے ایک انسان نے 2 روزے خدا نخواستہ توڑے ہیں یا 3 روزے توڑے ہیں، تو اب اس پر جو ہے وہ 2 60 دو بار جو ہے وہ 60 60 یا 3 بار 60 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے. تو اب ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 روزوں کے کفارے کے لیے جو ہے 180 مسکینوں کو ڈھونڈ کر لائے اور ان 180 مسکینوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ایک مد کھانا تقسیم کرے یا ان سب کو دعوت کرے، بلکہ 60 مسکین کافی ہیں. 60 کے 60 مسکین کو 3 3 مد، یعنی ہر روزے کے بدلے ہر فقیر کو ایک مد، گویا جو ہے وہ 3 روزے ہیں اور ہر فقیر کو 3 مد جو ہے وہ کھانا دے سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ ایک روزے کے بدلے ایک فقیر کو ایک کھانا دے رہا ہے. یہ نہیں کہ 20 فقیر کو ایک روزے کا دے دیا اور دوسرے 20 فقیر کو ایک روزے کا، دوسرے 20 فقیر کو جو ہے وہ تیسرے روزے کا، یہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو ہے وہ ایک فقیر کو ایک روزے کا ایک مد، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ توانائی نہیں رکھتا ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیپیسٹی اس کے پاس اتنی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ 60 کے 60 فقیر کو ایک ساتھ کھانا کھلا سکے، تو وہ یہ کر سکتا ہے، یہ ادھیکار اس کو حاصل ہے کہ 20 فقیروں کو آج کھلا دیا اور 40 فقیروں کو جو ہے وہ ایک مہینے بعد کھلا دیا، یا 30 کو آج کھلا دیا، 30 کو ایک مہینے بعد کھلا دیا، یا یہ کہ مکان اور جگہ کی وجہ سے اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہے اس کے مکان میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں، وہاں کھلا سکے، تب بھی جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، مثلا آدھوں کو آج کھلا دیا، آدھوں کو کل یا کچھ دن بعد کھلا دیا، اس طریقے سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر کھانا دینا چاہے تو 20 فقیروں کو ایک ایک مد آج دے دیا، 20 کو جو ہے ایک ہفتے بعد دے دیا، اور آخر کے 20 کو جو ہے وہ 15 دن کے بعد ایک ایک مد تمام دے دیا. دوستو، یہ احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے کفارے کے سلسلے میں بیان کیے. اب یہاں پر دو سوال کیے گئے ہیں، جو دو سوال ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ان کے جوابات بھی فقہا نے کیا دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر کفارہ جمع، یعنی اکٹھا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، کئی کفارے واجب ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک کے بجائے چند کفارے واجب ہوتے ہیں، جیسے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس میں 3 کفارے تھے، غلام کو آزاد کرنا، और 2 महीने के रोज़े रखना, 30 फ़कीर 60 फ़कीरों को खाना खिलाना, या इसी तरीके से किसी हराम काम के ज़रिए से रोज़े को बातिल कर लेता है, उसके भी 3 कफ़ारे थे। तो ऐसी सूरत में सवाल ये किया गया है कि क्या इस ज़माने में जबकि ग़ुलाम नहीं पाए जाते हैं, क्या उस इंसान पर ग़ुलाम को आज़ाद करना अब भी वाजिब है या वाजिब नहीं है, बल्कि इसको उठा लिया गया है। फुकहा जवाब देते हैं कि अब ऐसी सूरत में जबकि ग़ुलाम नहीं पाए जाते हैं, ग़ुलाम को आज़ाद करना वाजिब नहीं है, बल्कि उठा लिया गया है, साकित हो गया है, और उस इंसान पर सिर्फ 2 चीज़ें वाजिब हैं, एक तो 60 रोज़े रखना और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। दूसरा सवाल ये किया गया है कि अगर कोई इंसान हज के लिए जाता है, हज अंजाम देता है, लेकिन हज के दरमियान जो है वो कोई कमी रह जाती है या कोई ऐसा काम हो जाता है कि जिसकी बिना पर जो है वो कफ़ारा वाजिब हो जाता है, और वो हाजी वापस आने के बाद जो है वो भेड़ को ज़बह कराता है और उसको जो है वो तकसीम कर देता है, या खाना बनाकर जो है वो गरीबों को बुला लेता है और उसे खिलाता है, तो क्या वो इंसान जो हज करके आया है, जिसने कफ़ारे के तौर पर भेड़ को ज़बह कराया है, क्या वो इंसान खुद भी इस भेड़ के गोश्त को खा सकता है? फुकहा फरमाते हैं कि वो इंसान इस भेड़ के गोश्त को नहीं खा सकता, बल्कि सिर्फ दूसरे लोग खा सकते हैं। दोस्तों, ये कफ़ारे का अहकाम यहीं पर तमाम होते हैं। अब हम एक नई गुफ्तगू आपके सामने शुरू करते हैं और वो है खाना और पीना। खाने पीने के सिलसिले में फिर मैं एक बात दोबारा से यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि खाने पीने के भी शरीयत में अहकाम हैं। इंसान ये ना सोचे कि ये तो हमारे ज़ाती मामलात हैं, इसमें शरीयत का क्या इंटरफेयर है, ऐसा नहीं है। शरीयत का इंटरफेयर, शरीयत की दखल अंदाजी यहाँ पर भी मौजूद है। सबसे पहले तो हम कुरान की एक आयत पेश करते हैं ताकि गुफ्तगू जो है वो नूरानी हो जाए। इरशाद खुदावंद आलम होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान। सबसे पहले जो है अल्लाह लताफत और नरमी के साथ और दिलजोई के साथ लोगों को पुकार रहा है, ए वो लोग जो ईमान ले आए। कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से पाकीज़ा जो चीज़ें हैं उनको खाओ, यानी जो चीज़ें तुमको अता की हैं। रज़क नाकुम यानी सिर्फ रिज़्क़ जो हम मुराद लेते हैं, खाना पीने की चीज़ें वो मुराद नहीं है। मा रज़क नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है उनमें से तय्यबात यानी पाक अच्छी और नफीस चीज़ें खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और सिर्फ खाओ नहीं बल्कि खाने के बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। इनकुम तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अपने परवरदिगार की इबादत करते हो, यानी अगर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो तो उसकी दलील ये है कि जब उसके रिज्क को खाओ तो उसका शुक्रिया भी अदा करो। और इत्तफाक की बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर जब भी खाने और पीने का जिक्र किया है, वहाँ पर जो है एक जिम्मेदारी इंसान के लिए बयान की है आखिर में, जैसा कि यहाँ पर जिम्मेदारी बयान की है, वश्कुरू और शुक्रिया अदा करो। एक मकाम पर जो है वो इरशाद होता है, कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, मुख्तलिफ मकाम पर। लिहाजा जो है खाने पीने के मुकाबले में जिम्मेदारियाँ भी पाई जाती हैं। अब फुकहा फरमाते हैं कि इंसान की अपनी जान की हिफाजत और सलामती के लिए, रूह की सलामती के लिए, और इंसान की नस्ल की बका के लिए, दूसरों के हुकूक के एहतराम के लिए और दीगर चीज़ों के लिए खाने पीने के सिलसिले में कुछ ऐसे कवानीन हैं और कुछ ऐसे मुकर्ररात हैं कि जिनकी रियायत करना, जिनका लिहाज करना ज़रूरी है, और अगर उन कवानीन का लिहाज ना किया जाए तो दुनिया में भी हमारे लिए हरज हो सकता है, और शरीयत के एतबार से तो हरज है ही है अगर शरीयत के अहकाम की मुखालफत की जाए। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो चीज़ें खाई भी जाती हैं उनकी किस्में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो चीज़ें आमतौर पर खाई जाती हैं उनकी 3 किस्में हैं, या तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगी हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो हैवान वगैरह हैं, जानवर हैवान, और तीसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ना ज़मीन से उगी हैं ना हैवान वगैरह हैं, बल्कि उनको बनाया गया है। अब वो चाहे वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ों से बनाया गया हो, या हैवानों के ज़रिए, या हैवान के दूध वगैरह से बनाया गया हो। बहरहाल, जो ज़मीन से चीज़ें उगती हैं उनमें क्या क्या हैं, उनमें जो है वो फल हैं, जैसे आम, केला, अमरूद, और दुनिया भर के फल जो हैं, दूसरे सब्जियात हैं, आलू, बैंगन, गोभी वगैरह, और तीसरे जो हैं वो हबूबात यानी दाने, जिनमें जो है वो दालें हैं, गेहूं है, और ज्वार, और बाजरा, चावल, ये सब जो है वो हबूबात में शामिल होता है, लोबिया, चने वगैरह। उसके बाद जो है वो हैवान, हैवानों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, चारपा यानी जो जानवर चार पैरों पर चलते हैं, जैसे जो है वो बकरा है, ऊँट है, और भैंस वगैरह। उसके बाद जो है वो परिंदे हैं, परिंदों में जैसे कबूतर है और तीतर वगैरह हैं। इसके बाद दरियाई जानवर यानी पानी में रहने वाले, जैसे मछली, और उसके बाद जो है वो हशरात यानी ज़मीन के कीड़े मकोड़े। अब इनके ये हैवानात में हो गया है, अलबत्ता इनके अहकाम जो हैं वो आप ये ना समझे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आज़ादाना तौर पर जायज़ है। इनके अहकाम और कवानीन आगे, और इनकी लिमिटें क्या हैं वो आगे जो है वो बयान की जाएगी। इनकी लिमिट क्या है, हदूद क्या है, वो सब बयान किए जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो जो बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर जो है वो अचार बनाया जाता है, वो आम से बनाया जाता है, गोया ज़मीन में उगने वाली चीज़ से, या मिसाल के तौर पर दही बनाई जाती है, या जो है पनीर बनाया जाता है, या घी बनाया जाता है, ये जानवर से बनाया जाता है, जानवर के दूध से, या इसी तरीके से तेल वगैरह जो बनाया जाता है वो तेल जो है वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ों से, जैसे सरसों है और पीपलमेंट वगैरह है, इंजीर, जैतून है, इन चीज़ों से तेल बनाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो खाने पीने के सिलसिले में तीन किस्म के हैं, ज़मीन से उगने वाली, हैवानात, और जो दूसरी चीज़ों से बनाया जाता है। अब जो है वो हम इनके अहकाम आपके सामने अलग अलग करके बयान करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ें के जो उगती हैं, उनमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें खाना जायज़ है। तमाम फल, जितने भी फल हैं दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हैं, सबका खाना जो है वो हलाल है, यानी फल हलाल हैं। अब ये ना समझे इंसान के चाहे किसी का भी हो उसका खाना हलाल है, बल्कि वो एक दूसरा मसला है, ज़ातन जो है खुद फल को खाना हलाल है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसान चोरी करके ले आए, किसी के बाग से आम तोड़ ले, या अमरूद तोड़ ले, या किसी के ठेले से आम चुरा कर भाग जाए, तो उस फल का या उस आम का, उस अमरूद का खाना हलाल है, लेकिन इसके लिए नहीं जिसने चोरी की है, बल्कि जो उसको खरीदे या जो उसका मालिक है। इसी तरीके से तमाम सब्जीजात जो हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, आलू, बैंगन, गोभी, गाजर, जो भी कुछ है, सब के सब हलाल हैं। और इसी तरीके से हबूबात यानी दाने, यानी चावल, गेहूँ, और चना, मसूर की दाल, और मूंग, जितनी भी हैं, सब तरह की दालें, चावल, चने, और लोबिया वगैरह, ये सब के सब क्या हैं, ये भी हलाल हैं। लेकिन इन चीज़ों में से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के बदन के लिए नुकसानदेह हो, तो फिर उसको खाना हलाल नहीं है। लेकिन नुकसानदेह से क्या मतलब है, नुकसानदेह से मतलब ये है कि वाकई इतना नुकसान देती हो कि उसकी जान का ख़तरा हो, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा नुकसान है तो ज़ाहरन जो है उसकी परवाह नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये खाने पीने के सिलसिले में कुछ अहकाम थे जो हमने आपके सामने बयान किए, और जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं उनके सिलसिले में भी हमने आपसे गुफ्तगू की और आपके सामने बयान किया कि फल, सब्जियां और जितने भी दाने वाली चीज़ें हैं गोया जो ज़मीन से उगती हैं, उन सबको खाया जा सकता है और हलाल है, अलबत्त खाने वाली हों। अगर खाने वाले ना हो, मिसाल के तौर पर कोई इंसान भंग खाने लगे, तो ये नहीं, बल्कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो जायज़ हैं। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।